वाणी में आता है, काया कोठी अजब है साजा, जिसमें साहब आप विराजा, चौदह लोक की रचना रचाई, सकल ब्रह्मंड तिसमें लख पाई। मेरी जो देह है इसके लिए वाणी कह रही है कि काया कोठी अजब है साजा। ये काया रूपी कोठी ये ऐसी अजीब और गरीब है क्योंकि इसकी रचना प्रभु ने की है। और क्या इसमें अजीब बात है, जिसमें साहब आप बराजा, जिसने मेरी इस देह की रचना की है, जिसने संसार की रचना की है, वो प्रभु मेरी इस देह में खुद विराजमान है, जिसको दसवां द्वार कहते हैं, जो कपाल में स्थित है। प्रभु का निज स्थान, निज सिंहासन मेरी देह के अंदर उपस्थित है और वो खुद उसमें विराजमान है। और वही प्रभु वाणी के द्वारा हमको सिखा रहे हैं। कोई मनुष्य कह देगा तो शायद आपको बात का भरोसा होगा या नहीं होगा, जब प्रभु खुद अपने बारे में बता रहे हैं वाणी के द्वारा। क्योंकि महाराज जी जब समाधि में होते थे और वाणी जब अवतरित होती थी, भगत जी जब लिखते थे, तो जब समाधि टूटती थी और भगत जी महाराज जी को स्नान करा के चाय पिला के जब वाणी के करेक्शन के लिए जो गलतियां रह जाती थी संशोधन के लिए महाराज जी के आगे बैठते थे, तो महाराज जी कहते थे प्रेमी इनको पता नहीं ये वाणी कब आई क्यों आई, तुम जब पढ़ते हो तब पता लगता है ये वाणी क्या कह रही। तो गुरु के शरीर में भी वही प्रभु स्थित है जो मेरे शरीर में स्थित है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, मेरे मुंह से जो वाणी निकल रही है, जो वचन निकल रहे हैं, उसमें वासना प्रकट होती है, संसार का चिंतन प्रकट होता है, संसार के भोग विलास की इच्छाएं प्रकट होती है। लेकिन गुरु के मुख से जो वाणी निकल रही है वो ये ज्ञान दे रही है कि काया कोठी अजब है साजा, जिसमें साहब आप विराजा, चौदह लोक की रचना रचाई, सकल ब्रह्मंड तिसमें लख पाई। इस चौदह लोक की रचना है मेरा शरीर। ये मेरे शरीर में कौन से चौदह लोक हैं? पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चौदह लोक हैं जो मेरी देह में हैं, देह में स्थित है, लेकिन मैं सो रहा हूं। सारी संपत्ति मेरी बाहर है, सारा ब्रह्मांड इस देह के अंदर है, लेकिन मेरी संपत्ति बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि मेरी वासना ही बाहर फैली हुई है। इसलिए जब मैं किसी गुरु का संग करता हूं या उसकी वाणी का स्वाध्याय करता हूं, उसकी बातों पर गहरा मनन करता हूं, तब मेरी बुद्धि में यह निश्चय आता है कि सारा संसार जो बाहर भटक रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, ये तो सारी जिंदगी भटकते ही रहते हैं और भटकते 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 इनकी मृत्यु आ जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। इनको संसार में वासना फैलाकर, कर्म को बढ़ाकर, सुख दुख में विचलित रहकर मिलता क्या है इनको? वास्तव में देखा जाए तो हम सुबह उठ से उठकर लेके रात के सोने तक बेचैनी की ही कमाई करते हैं। सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जो मेरे मन को चंचल करते हैं और बेचैन करते हैं, क्योंकि मुझको सही मार्ग का पता ही नहीं है, मेरा गुरु कोई है ही नहीं। सत्य तो यह है, संसार ही मेरा गुरु है। तो इसीलिए जब ये वाणी हम पढ़ते हैं ध्यान से, श्रद्धा से, तब ये बुद्धि सोचने को मजबूर हो जाती है। यदि श्रद्धा ही नहीं है, केवल पाठ कर लिया, उससे क्या हो जाएगा? ये प्रभु खुद बोलकर बता रहे हैं हमको, मेरे लिए बोल रहे हैं वो, गुरु के देह में रहते हुए वो मेरे लिए बोल रहे हैं। तो ये साधारण वाणी है क्या? एक एक शब्द पर जरा विचार करके देखो कि काया कोठी अजब है साजा, बड़ी अजीब और गरीब कोठी है ये। मेरी देह साधारण देह नहीं है। क्यों अजीब है? जिसमें साहब आप विराजा तो सारे जगत का मार्गदर्शन सत्पुरुषों के द्वारा कर रहा है प्रभु। जो धरती को संभाले हुए है, मेरी श्वास को संभाले हुए है, मैं तो श्वास कभी ध्यान देता ही नहीं इसके ऊपर, आप आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि वो मेरी श्वास को संभाले हुए है, अर्थात मेरे जीवन को संभाले हुए है, और मुझे उसका कोई होश ही नहीं। जरा सी घर में कोई मेरी केयर कर ले तो मैं बड़ा प्रेम करता हूं, देखो मेरा कितना ध्यान रखता है। क्योंकि जो प्रभु तेरे जीवन को संभाले हुए हैं, उसके उसके प्रति तेरे अंदर कोई भाव ही नहीं है। शायद दिन में एक बार भी मेरे मन में ये बात नहीं आती होगी कि प्रभु मेरे जीवन को संभाले। तो इसलिए जब वाणी पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, तब हमारी ये बुद्धि की आंख खुलती है कि वास्तविकता तो यही है। मेरी जिसमें साहब आप विराजा, 14 लोक की रचना रचाइए। इस देह में 14 लोक की रचना रचाइए उसने। मेरे माता पिता ने रचना नहीं रचाइए, वो जानते ही नहीं। तो वो 14 लोक, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम संसार का अनुभव करते हैं, सेंस करते हैं। कर्म इंद्रियों के द्वारा अपनी वासना पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये 14 लोक की रचना है, जिसकी इच्छा मन में उठती है, निर्णय बुद्धि में होता है और बुद्धि जानती है। कहते सकल ब्रह्मांड तिसमें लख पाई, और इस देह के अंदर सारे ब्रह्मांड को तू देख सकता है, उसकी रचना को देख सकता है। इसीलिए जो सतपुरुष होता है, उसको यदि आपको कभी देखने का मौका मिले या उसका जीवन पढ़ने को मिले, ध्यान से मैं उसको उस पर चिंतन करूं, तब ये भेद बड़ा स्पष्ट खुल जाता है। महाजी बैठे होते थे, प्रेमी के चारों तरफ गोला बनाए हुए बैठे होते थे सर्किल में, और महाजी की गर्दन अक्सर नीचे को लटकी होती थी। वो गहन समाधि में है, इसको सहज समाधि कहते हैं, जहां संसार के अनुभव का लेश मात्र भी, वहां कुछ भी नहीं। उस हालत में जिसको हम ईश्वर सत्ता कहते हैं, उसमें वो स्थित है। लेकिन जब उनकी वो स्थिति बदलती है, तब धीरे धीरे करके वो उस शून्य शिखर से नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं तब उनको ये अनुभव होता है, ये उनका अनुभव ही ज्ञान है, किस प्रकार से ये देह से इस 14 लोक की रचना रची जाती है, जिसमें संसार भी शामिल है, देह भी शामिल है। इसलिए वाणी में पिछली बार आया भी था कि समाधि टूटती है तो संसार कैसे प्रकट होता है उसमें। तो गुरु को कोई वहम नहीं होता कि पूरा संसार ईश्वर के अंदर समाया हुआ है। तो इसलिए पूरे संसार में एक एटम भी ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वर सत्ता मौजूद ना हो। तो मेरी ही अपनी एक ऐसी स्थिति है कि पूरा संसार जो इतनी वैरायटी है, ये ईश्वर में बदल जाता है, ईश्वर सत्ता में परिवर्तित हो जाता है। उस स्थिति को समाधि कहते हैं। ना वहां कोई विचार है, ना वहां कोई चिंतन है, ना वहां कोई द्वैत का अनुभव है, केवल अद्वैत है, जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, जिसको शब्द ब्रह्म कहते हैं, जिसको नाद ब्रह्म कहते हैं। तो अब बताइए कि मेरी एक अनुभव की अवस्था है इस देह के रहते रहते, और वहां बुद्धि का निर्णय होता है कि असलियत तो देह की है। अब बताइए, पहले तो हम पढ़ के सीखते हैं या अनुभव से सीख लेते हैं कि देह मर जाती है, लेकिन योगी या सत्पुरुष अनुभव से क्या सीखता है कि पूरा का पूरा संसार, यहां वैरायटी ही कुछ नहीं है, कि केवल ईश्वर सत्ता है। इसलिए कहते हैं कि सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। जिस प्रकार स्वप्न की रचना प्रकट होती है, मैं अनुभव करता हूं उसको, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन वाणी उसके भेद को खोल रही है। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, जिस प्रकार स्वप्न की रचना है जो मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अपने इस स्वरूप में जागता हूं जिसको हम जागृत हालत कहते हैं, तब बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेता हूं सपना तो एक झूठ था, मेरी ही सोने वाली स्थिति है, मेरी ही जागृत स्थिति है। तो जागृत हालत में मन मेरा एक्टिव है, चंचल है, और सोते समय मन शांत है, इसको गहरी नींद कहते हैं। लेकिन सोते समय भी यदि मन चंचल है तो उसको स्वप्न अवस्था कहते हैं। जब मन चंचल है तो संसार भी प्रकट है, इस जागृत हालत में भी मन चंचल है तो संसार प्रकट है, इस जागृत हालत में ही मेरी समाधि की हालत हो जाए तो संसार गायब। सोने की हालत में मैं नहीं जानता मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मैं क्या अनुभव कर रहा था, लेकिन जागृत हालत में यदि मेरे संकल्प मन का बंद हो जाए तो मुझको अनुभव होता है कि क्या चीज है। तो वो कह रहे हैं कि सकल ब्रह्मांड तिसमें लख पाई, सारा ब्रह्मांड तो इस देह में ही अनुभव कर लेता है, देख लेता है, जान लेता है। इसे रामकृष्ण परमहंस जो भक्त थे, सिद्ध पुरुष भी थे, वो कहते थे कि जब समाधि से नीचे आते हैं, जो मंडली उनके चारों तरफ बैठी हुई थी उस समय, उनसे कहते हैं कि सात हाथ नीचे आना पड़ता है तब बात करने लायक स्थिति होती है। अब सात हाथ क्या है, वो सात स्थितियां हैं समाधि की, जो ऊपर से गहन समाधि से लेकर नीचे तक मनुष्य जब द्वैत में आता है तो सात स्थितियों को पार करके फिर वो बात करने लायक। तो इसलिए वो कहता है कि जहां इस देह के चक्कर में तुम जी रहे हो, अपना स्वरूप समझ रहे हो, ये तो मर जाएगी। जो चीज नष्ट होने वाली है उसके लिए जी रहे हो, जो परमानेंट रहने वाली है उसको भूले बैठे हो, क्योंकि संसार को मैंने गुरु बना रखा है इसलिए मेरी बातें समझ में ही नहीं आती। पूर्ण गुरु पर विश्वास हो और आपको इस बात पर भी विश्वास हो, ये जो वाणी गुरु के मुख से निकल रही है ये ईश्वर खुद बोल रहा है, तो बताइए कि ईश्वर भी क्यों कोई स्वार्थी है जो आपको बहकाएगा। पूरा संसार मिलकर आपको बहका रहा है, कुछ का कुछ बता रहा है, ईश्वर ही ऐसा है जो आपको सत्य बता रहा है, आपकी आंख खोलना, विचार की आंख खोलना चाह रहा है, उसको मैं महत्व कुछ नहीं दे रहा हूं। अब बताइए ये वाणी ही तो बात कह रही है, मैं संसार की बात को कितना ठोस सत्य समझता हूं, ईश्वर की बात को ऐसे उड़ा देता हूं। ये मेरा मेरी बुद्धि का स्वभाव बना हुआ है, वैचारिक स्वभाव बना हुआ है। यदि इस विचार को ध्यान में रखें कि प्रभु बोलकर मेरे लिए ये वाणी प्रकट कर रहे हैं, तब मैं इस वाणी पर ध्यान दूंगा। क्या कि काया कोठी अजब है साजा, जिसमें साहब आप बिराजा, चौदह लोक की रचना रचाई, सकल ब्रह्मांड तिसमें लख पाई, सारा ब्रह्मांड मैं इस देह के अंदर अनुभव कर सकता हूं। ये ऐसी देह है जो पूरा ब्रह्मांड मैं इस देह के अंदर अनुभव कर सकता हूं। तो अब बताइए कि इतनी कीमती चीज मुझको प्राप्त है और मैं कैसा दुरुपयोग कर रहा हूं उसका, जरा जरा सी चीज के लिए रोता हूं, जरा जरा सी चीज के लिए दुश्मनी कर लेता हूं लोगों से, जरा मेरे अहंकार पर ठेस पहुंच जाए देखो मैं सहन ही नहीं कर पा रहा, सारा ज्ञान धन मेरा जाता रहता है, जरा सा इस देह के झूठी देह का अपमान कोई कर दे मैं कैसा आग बबूला हो जाता हूं, और जरा से सम्मान के लिए क्या क्या नहीं कर लेता था? तो मेरी क्या दुर्दशा हो रही है इस अज्ञान में जीकर, इसका एहसास तभी होता है जब सत्पुरुषों की वाणी, सत्पुरुषों के वचनों पर गहरा मनन जब करते हैं, और जब पढ़ने बैठते हैं तो पहले हमारी बुद्धि में निश्चय होता है कि मैं सत्य पढ़ रहा हूं, अपने बारे में भी और संसार के बारे में भी। सत्य केवल सत्पुरुष जानता है और कोई नहीं जानता, इसलिए उसके मुंह से निकली हुई वाणी, उसके कलम से लिखी हुई लिखे हुए वचन वही सत्य को प्रकट करते हैं, वही सत्ता को प्रकट करते हैं, बाकी संसार को तो पता ही नहीं, इसलिए उसका वर्णन तो सारा झूठी कलम है। तो अब बताइए सारा ब्रह्मांड जिसमें मेरी देह में है और मैं मूर्ख बनकर छोटी छोटी चीजें संसार की इकट्ठी कर रहा हूं, उसके लिए रो रहा हूं, दूसरों को कष्ट दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं उसके लिए, तो मेरी कितनी अजीब और गरीब देह है ये। सारा ब्रह्मांड इस देह के अंदर ही अनुभव हो जाता है। इसलिए इस गर्दन से नीचे के हिस्से को पिंड कहते हैं और इस खोपड़ी को ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में यही ब्रह्मांड है। तो जब मेरी सुरत मेरा ध्यान इस देह को छोड़कर ऊपर जाता है तब मुझे सारी रचना का पता लगता है। ये मेरी अपनी साधना की स्थिति है। महाजी देखिए ना, बचपन से ही 3 साल की आयु से वो खाट पे बैठे रहते थे, मां सो जाती थी बैठे रहते थे। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में ही वो स्थिति प्राप्त कर ली थी कि ये जो मेरा ब्रह्मांड है इसके अंदर उनकी स्थिति बचपन से ही लेके आए थे, तो उसमें कितना आनंद था कि 3 वर्ष का बालक सोना ही नहीं चाह रहा है, सारी रात जग रहा है, वो प्रभु के आनंद में है। और बाकी बालक क्या करते हैं? ना खुद सोते हैं ना मां को सोने देते। तो बताइए कितना अमीर आदमी हूं मैं, कितना कीमती इंसान हूं मैं, और मेरी क्या कीमत है? किसी को सुख देना तो छोड़ो, मैं पापी बनकर संसार से चला जाता, घर में भी सबको यूज करता हूं, बाहर भी सबको यूज करता हूं, अपने सुख के लिए। तो इसीलिए यदि मैंने होश का जीवन व्यतीत नहीं किया, इस वाणी पर गहरा मनन नहीं किया, तो मैं इसकी क्या कीमत अदा करूंगा इस वाणी की। मैंने जब ये पंक्तियां पढ़ी मैंने कि ये कोई साधारण पंक्तियां है, काया कोठी अजब है साजा, मेरी ये काया कोठी है और कितनी कीमती कोठी है, जिसमें साहब आप विराजा, अरे जिसमें ईश्वर जिस कोठी में खुद विराजमान हो सिंहासन पर, वो कोठी कितनी कीमती होगी, सारी दुनिया उस कोठी के दर्शन करना चाहेगी, अंदर आना चाहेगी, उसको देखना चाहेगी। और वाणी खुद कह रही है, प्रभु खुद कह रहे हैं मेरी इस देह के बारे में जो मेरे लिए नाशवान है, मर जाती है, लेकिन प्रभु कहते हैं ये बेशकीमती शरीर है, मैंने बनाया है इसे, मैं खुद इसमें विराजमान हूं, लेकिन तू बाहर भटक रहा है, तू अंदर नहीं आ रहा, इसलिए वो गुरु गुरु बनकर आ रहा है, जी कर तुझे दिखा रहा है कि 3 वर्ष का बालक है वो गुरु, वो सारी रात प्रभु के आनंद में लीन है, ना उसे नींद आ रही है ना उसे भूख सता रही है। तो वो भी बालक ही है, मैं भी कभी बालक ही था, लेकिन मेरी क्या हालत थी, मैं रोता ही रहता था, घर वालों को भी रुलाता था, खुद भी रोता था, लेकिन एक गुरु का शरीर है बालक के रूप में, वो प्रभु के आनंद में लीन, और 9 वर्ष की आयु में घर से बाहर जाना शुरू कर दिया, रात को लेट आना शुरू कर दिया वापस, ये उसकी हालत। तो हमें सोचना चाहिए कि मानव शरीर ही तो है, गुरु शरीर का क्या उपयोग कर रहा है, मैं क्या उपयोग कर रहा हूं इसको। तो सारा ब्रह्मांड इसमें है और गुरु खुद विराजमान है और 14 लोक की रचना इस देह के अंदर है, जिसको 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। मन के अंदर जो इच्छा होती है उसको पूरी करता हूं नहीं करता हूं, उसकी प्लानिंग कौन करता है? बुद्धि तो प्लानिंग करती है उसकी, इसको पूर्ण करो इसको सुख मिलेगा, लेकिन जिसने इसकी रचना रची उसको मैं भूला रहता हूं। तो याद रखिए, प्रभु ने जब इतनी कीमती चीज तुझको दी, एक हीरा तुझको दिया, तू उसको उससे खेल रहा है, उस हीरे से रखने की बजाय सुरक्षित उससे खेल रहा है, क्योंकि तू बालक है, उसकी कीमत ही नहीं समझ रहा। तो समय जो मनुष्य जीवन का मुझे दिया, ये हीरा जन्म, इसलिए इसको हीरा जन्म कहते हैं, ये हीरा समय है, मैंने इसका 1 मिनट भी दुरुपयोग नहीं करना था, प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार इसका मैंने सदुपयोग करना था, ताकि मेरा प्रभु खुश हो और आगे चल के मेरे ऊपर भी वैसी ही कृपा करे जैसे महाजी पर उसने की, कि बचपन से ही अंदर का बोध दे दिया और महाजी बचपन से ही उस प्रभु के आनंद में मस्त हैं, दीन हैं। सारी जिंदगी उनके जंगलों में कटी, लेकिन जो प्रेमी उनके पास पहुंचते थे, उनके आगे बैठते थे, प्रेमी तरसते थे कि महाजी के पास कहीं बैठने को मिल जाए, चाहे जंगल ही क्यों ना, अक्सर ऐसा भी होता था, महाजी बैठे हैं, प्रेमी सर्कल बनाया चल बैठे हैं, बीच में से सांप आ रहा है, प्रेमी उछल के इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, और महाराज जी के चरण स्पर्श करके सांप चला जा रहा है। तो सारी सृष्टि उस देह के अधीन है और मैं डरता ही रहता हूं, सारी जिंदगी डरता ही रहता हूं। शरीर मेरे लिए भय का कारण है, मेरे लिए वासना का कारण है, मेरे लिए मुसीबत का कारण है, क्योंकि ये रोगी भी होता है, ये बूढ़ा भी होता है, ये मर भी जाता है। लेकिन प्रभु ने इस परिवर्तनशील देह के, इस नाशवान देह के अंदर उस अमर प्रभु के प्राप्ति कर लिए, उस अमर प्रभु के दर्शन कर लिए, उसके साथ वो एक हो गए, वो खुद अमर हो गए। तो मानव जीवन बड़ी कीमती चीज है, लेकिन हमने यदि सत्पुरुष की वाणी पर मनन नहीं किया, गहरा ध्यान नहीं दिया कि शब्द की कह क्या रहे हैं, तो ऐसी पढ़ जाएंगे क्या? कैसी अजीब और गरीब बात है कि प्रभु इस देह को बनाकर खुद इसमें स्थित भी है और सारा ब्रह्मांड की रचना भी इस देह के अंदर कर रखी है, जो कुछ भी संसार में है वो सब इस देह के अंदर है। ब्रह्मांड के अलावा कुछ बचा क्या? ब्रह्मांड का मतलब होता है खाली धरती नहीं, पूरा टोटल स्पेस इस देह के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए कहते हैं कि अंतर्गत में सूझया अनंत शकत भंडार, मंगत तिसका खेल है सर्व जगत विस्तार। अब देखिए, अंतर्गत में सूझया अनंत शकत भंडार, जो गुरु है वो भी तो हमारे इतने जन्म के समय जीव ही था, लेकिन उसने उस प्रभु को छोड़कर संसार का होके नहीं किया, वो ईश्वर के लिए ही जिया, तो उसने अनुभव किया कि ये इस देह के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति का भंडार है। क्यों? क्योंकि वो अनंत ईश्वर इस देह के अंदर खुद मौजूद है। कहते हैं मंगत तिसका खेल है सर्व जगत जगत विस्तार, सारा इतना बड़ा जगत है, इसका जो विस्तार है, इसका जो फैलाव है, इसकी जो रचना है, ये प्रभु का खेल है। क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति उसी प्रकार वासना से हुई है, उसी प्रकार संकल्प से हुई है, जिस प्रकार मेरे स्वप्न के समय मन में संकल्प उठता है, वासना उठती है और संसार मेरे आगे निर्माण हो जाता है। लोग भी पैदा हो जाते हैं, वस्तुएं भी पैदा हो जाती हैं, शहर और पूरा पूरा संसार पैदा हो जाता है, और मैं जागने के बाद बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लेता हूं कि वास्तव में वो स्वप्न किसी ने बनाया नहीं, वो मेरे मन की ही रचना थी, ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं, मुझे पता है वो स्वप्न शरीर के बाहर नहीं बनाया, शरीर के अंदर ही बनाया। इस देह के अंदर एक और ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है स्वप्न के रूप में, और मैं उस पर अविश्वास नहीं करता, जागने के बाद बड़े आराम से कहता हूं ये तो मेरे मन की रचना थी। तो तेरा मन पूरा संसार गढ़ सकता है, और ईश्वर संसार नहीं गढ़ सकता, तू काल्पनिक संसार की रचना करता है, ईश्वर वास्तविक संसार की रचना करता है, लेकिन ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी काल्पनिक है। मंगत तिसका खेल है सर्व जगत विस्तार, खेल में तो चीजें बनती हैं बिगड़ जाती हैं, वो तो खेल है। सारा इतना बड़ा जगत का विस्तार प्रभु के लिए खेल मात्र है। इसलिए जब ये जीव अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव करता है, तो उसके अंदर इस देह के अंदर ही उस ब्रह्मांड का भी अनुभव करता है, और वो जानता है अपने अनुभव से ये केवल संकल्प से ये सारी स्थिति पैदा हुई है, मेरी देह और देह के बाहर का संसार ये मेरे संकल्प से निर्मित हुआ है, नहीं तो वाणी ये क्यों कहेगी सपना जैसे रात का ऐसे जगदा। तो ये झूठी रचना में मैं फंसकर इसको सत्य समझकर, और जो सत्य है जिसको ईश्वर कहते हैं उसको छोड़ देता हूं, इस नकली चीज को पकड़कर सारी आयु में नष्ट कर देता हूं, तो इतनी बड़ी मूर्खता करके फिर इस मूर्खता का मैं अहंकार करता हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सब जानता हूं, फिर चालाकियां करता हूं, अहंकार, इस देह का अहंकार बढ़ाता हूं, जो देह मिली मानव देह निर्माण होने के लिए, कि तू देह नहीं है यह, और ये नाशवान है, ये तेरे लिए दुख और बेचैनी का स्रोत है, इसकी कीमत तो क्यों बढ़ाता जा रहा है। अहंकार का मतलब क्या होता है कि मैं देह हूं, ये बात और गहरी हो जाए, तो मनुष्य जन्म इस अहंकार को खत्म करने के लिए मिला, इस अहंकार को लीन करने के लिए मिला, ताकि अंतर्यामी जो निर्माण ईश्वर है वो कोई अहंकार नहीं करता, उस तक मैं पहुंच सकूं, उसका दर्शन करके इस हमेशा के सुख दुख से मुक्त हो सकूं और मानव जीवन सफल कर सकूं। इसलिए वाणी पर ध्यान दें, वाणी क्या कह रही है उस पर ध्यान दें, और मैं सत्य पढ़ रहा हूं इस निश्चय के साथ वाणी पढ़ना शुरू करें कि मैं सत्य पढ़ रहा हूं, तब जाकर ये वाणी के भेद हमारे सामने खुलते हैं और हमारी बुद्धि इसको उसकी कीमत अदा करती है, उसकी वैल्यू समझती है, तब जाकर उस वाणी के अनुसार अपना जीवन बनाती है और जीवन सफल करती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।